Exato, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری ہفتہ وار، یعنی ہفتے میں صرف ایک بار درس قرآن کی کلاس جو کہ آن لائن ہوتی ہے، اور ہمارے جو آڈینس اس کلاس کی مینلی ہے شام والی کلاس کی، وہ مرد حضرات ہیں. صبح کے وقت جو ہے خواتین میں سورہ انعام کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، لیکن شام والی کلاس میں ہم سب کو ہی انوائٹ کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ خالص طور پہ مردوں کے لیے ہوتی ہے. تو بہرحال اس والی کلاس کے اندر ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، بلکہ ایک ہی آیت، آیت نمبر 19، تو اس کے معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو، یعنی یہود و نصارہ کو، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تحقیق کے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، جو کہ کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد، تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد بیان کرتا ہے، کھولتا ہے باتوں کو، ہے نا، حقائق کو کھولتا ہے، کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا. یعنی آ گیا، اب تمہارے پاس یہ بہانہ نہیں رہا کہنے کا کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو بس آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے، علی کل شے قدیر. تو اس میں ہم نے زمانے فترت کے احکام پڑھ لیے تھے کہ بھائی جو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں مبعوث ہوئے، وہ زمانے فترت کہلاتا ہے. تو اس میں اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر نہیں پہنچی کسی بھی نبی کی شریعت کی، اور ایسے ہی اس کا انتقال ہو گیا لا علمی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ توحید کے اوپر تو اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن باقی کسی چیز کا اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اچھا، پھر ایک سوال اور جواب آگے ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 91 کے اوپر، آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شیئرڈ ہوگا کہ ایک سوال اور جواب. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس آیت میں خطاب ہے، تو ان کے لیے اگرچہ زمانہ فترت میں کوئی رسول نہیں پہنچا، اگرچہ کہ کوئی رسول نہیں پہنچا اس زمانے میں، مگر ان کے پاس تورات اور انجیل تو موجود تھی. ٹھیک ہے نا، کتابیں تو موجود تھیں ان کے پاس، رسول نہیں آئے نا. تو ان کے علماء بھی تھے ان کے پاس، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اگرچہ کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن علماء ورثت الانبیاء تو ہوتے ہیں نا، انبیاء کے وارث، یعنی انہوں نے علم کو انبیاء سے سیکھا ہوتا ہے، وراثت میں لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے علماء بھی تھے، تو پھر قیامت میں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا کیا موقع تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی؟ بھئی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھی تاکہ تم عذر نہ کر سکو قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا، یعنی قیامت ہی کے دن عذر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہم نے نبی بھیج دیا تاکہ تم عذر نہ کر سکو، ایکسکیوزز نہ بنا سکو. تو یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو علماء بھی تھے، کتابیں بھی تھیں، تو پھر عذر کی کیا گنجائش بنتی تھی ان کے پاس؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایکنالج کیا इस गुंजाइश को, तो फरमाते हैं कि इसका जवाब ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक तक तौरात और इंजील असली बाकी नहीं रही थी, अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रही थी। तहरीफात होकर उनमें झूठे किस्से कहानियां दाखिल हो गई थीं, झूठे किस्से कहानियां दाखिल हो गई थीं, बेशक हो गई थीं, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में उल्टी सीधी बकवास किस्म की कहानियां, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गंदी गंदी बातें, ठीक है, और भी दूसरी चीजें, लेकिन ये ज्यादा मशहूर है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बातें, ठीक है। तो ये झूठे किस्से कहानियां दाखिल हो गई थी, लेकिन और क्या तहरीफ हुई? क्या सिर्फ किस्से कहानियां दाखिल कर देना ये उन्होंने किया था तौरात और इंजील के साथ? नहीं, बल्कि तहरीफ से यहां पर मुराद जो है वो जो मौजूदा अहकाम थे अल्लाह ताला के उनके अंदर, उनको भी इन्होंने तब्दील कर दिया था कि फलानी गलती के ऊपर ये सजा जो अल्लाह ताला ने प्रेस्क्राइब करी थी वो नहीं बल्कि कोई और सजा, ठीक है। इस तरह की चीजें उन्होंने चेंज कर दी थी, इसलिए उनका वजूद व अदम बराबर था, ठीक है, यानी जिसको हम आसान उर्दू में कहते हैं उनका होना या ना होना बराबर था, ठीक है। तो इससे हमारे सामने क्या उसूल की बात आती है, इस जुमले को पढ़ करके हमारे सामने एक बहुत बड़ा उसूल आता है, ठीक है, कि जब तहरीफात हो जाती है ना दीन के अंदर, तो अगर उस दीन के पैरोकार तहरीफात को कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो अब जो वो तहरीफ शुदा दीन है ना, वो ऐसा ही है जैसा कि वो है ही नहीं, जैसा कि वो है ही नहीं। क्या मतलब? कि जब दीन के अंदर तब्दीली कर दी जाती है, तो अब ये दीन जो है ना, ये अल्लाह का दीन रहता ही नहीं है, ये अल्लाह का दीन रहता ही नहीं है, बल्कि ये इंसानों का दीन बन जाता है, ठीक है ना, इंसानों का दीन बन जाता है। क्या मतलब? ये नहीं मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम भी तो इंसान थे तो नबी अलैहिस्सलाम का दीन नहीं रहा या नबी अलैहिस्सलाम का दीन बन गया, नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ये एक ही माने में इस्तेमाल किया है, अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल का दीन, वो एक ही दीन है, ठीक है ना, वो कोई फर्क नहीं है कि अल्लाह के दीन अलग है और रसूलुल्लाह के दीन अलग है, वो तो एक ही दीन है। लेकिन जब दूसरे लोग उसमें तब्दीली कर दें, तो फिर अब वो एक नया दीन बन जाता है, वो अल्लाह और उसके रसूल का दीन रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने दीन ही का लफ्ज इस्तेमाल किया, दीन का ही लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन उसका जो मुजाफ इलैह है वो चेंज कर दिया, मुजाफ इलैही वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या लकुम दीनुकुम वलिया दीन, वलिया दीनी, लकुम दीनुकुम वलिया दीनी, ये है असल में इस आयत की पूरे अल्फाज जो मुकम्मल है ना, दीनी है आखिर में, वलिया दीनी। क्या मतलब? कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, ठीक है ना, वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो दीनुकुम यहां पर मुजाफ क्या है? दीन, और मुजाफ इलैही कुम, ठीक है, यानी अंग्रेजी में हम इंग्लुदान इसको क्या कहते हैं, पोजेसिव नाउन कहते हैं ना इसको, पोजेसिव कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। तो दीन इज पोजेस्ड बाय यू, वो एक अलग दीन है, एंड दीन दैट इज पोजेस्ड बाय मी, ये अलग दीन है, ठीक है ना। तो लफ्ज दीन को अल्लाह ताला ने दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया। क्या मतलब? कि अल्लाह का जो दीन है उसके लिए भी दीनी का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह का जो रिलीजन है उसके लिए भी दीनी का लफ्ज इस्तेमाल किया, और इंसानों का जो रिलीजन है उसके लिए भी दीन ही का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन जिसकी तरफ उसकी निस्बत होती है उससे वो चेंज हो जाता है। अगर निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई या अल्लाह के रसूल की तरफ हो गई तो वो एक अलग दीन है, और अगर उसकी निस्बत इंसानों की तरफ हो गई यानी इंसानों ने अपनी तरफ से उसके अंदर चीजें ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, तो अब उसकी निस्बत इंसानों की तरफ हो गई, अब उसकी निस्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ नहीं रही, अब उसकी निस्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही कि जब जैसे लफ्ज बैत है ना घर, राइट। तो अब घर जो है ये तो अल्लाह का घर भी हो सकता है और ये तो मेरा घर भी हो सकता है। अब अगर आप बैतुल्लाह कहेंगे तो वो तो फिर सिर्फ मस्जिद ही को कह सकते हैं ना, मस्जिद को, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद काबतुल्लाह है, फिर जो है वो मस्जिद बैत यानी मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है, फिर जो है वो मस्जिद अक्सा है, और फिर जितनी मस्जिदें हैं दुनिया के अंदर है ना भाई, तो ये सब मस्जिदें हैं। लेकिन बैतुल्लाह, लेकिन अगर मैं अपना घर बना लूं तो उसके लिए भी तो बैत ही का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, लेकिन वो एक अलग अलग घर है, वो अल्लाह का घर नहीं कहलाएगा, वो मेरा घर कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से दीन का भी यही मामला है, ठीक है, कि अल्लाह का दीन अलग चीज है और इंसानों की तहरीफात के साथ जो दीन बनता है वो अलग चीज है। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर अप्लाई होती है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत में तब्दीली कर देते हैं ना, तो फिर अब हम उस चीज को इस्लाम 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 बोलते रहे तो, लेकिन हमारे बोलने से वो इस्लाम नहीं बन जाता, वो तो एक अलग दीन बन गया, वो तो एक नया दीन बन गया, वो इस्लाम नहीं रहा, ठीक है, वो तो एक नया दीन बन गया। अब आप उसको बेशक 1,000 मरतबा इस्लाम कहें, 10,000 मरतबा इस्लाम कहें, आपके कहने से वो इस्लाम नहीं बन जाएगा, वो एक अलग दीन बन चुका है। और वो दीन ऐसे ही है कि जैसे कि कोई यानी अब ये इस दीन के अंदर कोई फायदा नहीं है, इस दीन के अंदर कोई फायदा नहीं है कि चलो नमाजें तो हैं इसके अंदर जो है वो बैतुल्लाह का चक्कर लगाना तो है, तो इस वजह से इसका भी बड़ा फायदा है, नहीं, ठीक है, बल्कि वो अब खराब हो चुका है। और खराब चीज जो होती है ना तो वो नुकसानदेह होती है, वो फायदा मंद नहीं होती, वो नुकसानदेह होती है, ठीक है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा सा फल आप लेकर के आए, बड़ा जो है वो उसके अंदर विटामिन होती हैं उस फल के अंदर, उसके अंदर एक से एक जो है वो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उस फल के अंदर, लेकिन अब वो सड़ गया, जब वो फल सड़ गया तो अब उसको खाएंगे तो फायदा नहीं होगा कि भाई इसके अंदर विटामिन तो है ना, तो मैं खाऊंगा तो बेशक ही सड़ चुका है लेकिन फिर भी विटामिन तो मुझे फिर भी मिल जाएंगे, क्या ख्याल है, आप ऐसा कहते हैं कि सड़ा हुआ फल खाने से भी मुझे मेरी विटामिन इंक्रीज हो जाएंगे और मुझे फलाना भी कैल्शियम भी मिल जाएगा, मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे वो भी मिल जाएगा, नहीं, अब आपको बीमारी मिलेगी उसको खाने से, बात समझ में आ रही है। वो जब तक सड़ा नहीं था उस वक्त तक वो फायदेमंद था, जब वो सड़ चुका तो अब वो फायदेमंद नहीं रहा, हत्ता कि अब वो न्यूट्रल भी नहीं रहा कि ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, नहीं, वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब वो नुकसानदेह बन चुका है, अब वो नुकसानदेह बन चुका है। इसी वजह से फायदेमंद दीन तो सिर्फ और सिर्फ वो दीन है जो कि अपनी असली हालत पर कायम हो, जो अपनी असली हालत पर कायम हो, सिर्फ और सिर्फ वही दीन फायदेमंद है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा, इसको पढ़ने वाला जाहिल ही कहलाएंगा कहलाएंगा नहीं होता, कहलाएगा होता है, ठीक है, उर्दू को भी थोड़ा सा सही कर लेना, आप थोड़ा सा मेहनत कर लें अपने उर्दू के ऊपर, तो कहलाएगा, बढ़िया बढ़िया जो होती है ना उर्दू के अंदर उसको ऐसे पढ़ते हैं, कहलाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ने वाला जो है वो जाहिर ही कहलाएगा, वो मतलब उसको इस इल्म से फायदा नहीं होगा, वो इस दीन का जो इल्म हासिल कर रहा है उससे उसको फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, उसको नुकसान ही होगा ऐसे दीन का इल्म हासिल करने से भी, और अमल करने से और भी ज्यादा नुकसान होगा, यानी पेट भी खराब होगा उसका, जैसे सड़े हुए फल को खाने से उसके न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि उसका पेट खराब होता है ना, उसी तरीके से ऐसे दीन के ऊपर अमल करने वाला भी उसका भी पेट खराब ही होगा खाली, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि भाई अल्लाह ताला ने दीन اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے, نہیں, ایبسلوٹلی ناٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا خالی ذمہ نہیں لیا, بلکہ قرآن کے مفہوم کی اور معنی کی اور قرآن سے جو دین نکلتا ہے, ڈرائیو ہوتا ہے, اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ سب کا سب اس آیت کے اندر داخل ہے, انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تو اپنی اصل فارم میں موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اپنے خود ساختہ دین کو اسلام کا نام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی پریزرو دین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لیا تھا. نہیں, اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے, اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ دین اسلام کی اصل شکل پر عمل کرنے والے یہ آخر وقت تک رہیں گے, اور دین اسلام کی جو 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 کتابیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو جو کتابی شکل میں جو دین ہے وہ بھی آخر وقت تک رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کی تھیوری بھی آخر وقت تک موجود رہے گی اور اس کی پریکٹس بھی آخری وقت تک موجود رہے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو کلیم کرتا ہے کہ میں دین اسلام پہ عمل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح دین اسلام پہ عمل کر رہا ہے. نو, جیسے مثال کے طور پر یہ زیادہ آسان ہے سمجھنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب لکھے, رائٹ, فیبریکیٹڈ حدیثوں کی کوئی کتاب لکھے, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون تو اب کوئی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا, اس کے ہاتھ شل ہو جائیں گے, اس کے ہاتھوں پہ فالج گر جائے گا اور وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب نہیں لکھ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے کوئی گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب ہی نہیں لکھ سکتا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب بھی کوئی لکھ سکتا ہے, حتیٰ کہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کوئی کر سکتا ہے. کتنے لوگوں نے دعوے کیے, مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کتنے لوگوں نے دعوے کیے. اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اب کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جھوٹے نبی ہونے کا. نہیں, دعویٰ کرنے والے بہت سارے موجود ہیں اور آگے بھی پتہ نہیں اور کتنے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, شکیل بن حنیف ون آف دیم, جسٹ ون آف دیم. ٹھیک ہے, تو دعوے کرنے والے یا گھڑی ہوئی باتیں لکھنے والے یہ تو موجود رہیں گے, لیکن ایک کاپی, کیا مطلب ایک کاپی کا مطلب خالی نہیں کہ ایک فزیکل کاپی, لیکن ایک جماعت جو ہے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے, ایک جماعت جو ہے نا وہ بالکل صحیح دین کے اوپر قائم رہے گی اور ان کے پاس جو ہے وہ کتابیں بھی صحیح شکل میں موجود رہیں گی, صحیح شکل میں موجود رہیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں ہے نا تو وہ پھر نقصان دہ ہیں. یہ بدعتی دین جو ہے, چاہے کس شکل کی بھی بدعتیں ہوں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, ایڈیشن والی بدعتیں ہوں یا سبٹریکشن والی بدعتیں ہوں, بدعتیں دونوں شکل کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایڈیشن والی بدعتیں, جو چیز نہیں تھی اس کو آپ نے ایڈ کر دیا, اور کچھ ہوتی ہیں کہ جس میں کہ جو چیز تھی پروون اس کو آپ نے سبٹریکٹ کر دیا دین کے اندر سے, یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی بدعت ہے. تو یہ جو بدعت والا دین ہے یہ نقصان دہ دین ہے, نقصان دہ, نیوٹرل نہیں ہے کہ نہ فائدہ نہ نقصان, نو, دس از ہارمفل. ٹھیک ہے, تو پچھلی امتوں کے اندر یہی ہوا کہ اصل شکل میں چونکہ موجود نہیں تھی تو اس وجہ سے ہونا نہ ہونا برابر تھا ان کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب وہ فائدہ مند نہیں تھی بلکہ نقصان دہ ہو چکی تھی. اچھا, اتفاق سے کہیں کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گمنام جگہ میں محفوظ رہا بھی تو وہ اس کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بھائی پریکٹس تو نہیں ہو رہا تھا نا اس کے اوپر, پریکٹس بالکل ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تورات اور انجیل کے اصل نسخے موجود تو تھے اور آج بھی موجود ہیں, تورات اور انجیل کے اصل نسخے آج بھی پریزرو موجود ہیں, لیکن پریکٹس زیرو, بالکل زیرو پریکٹس اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی جو شخص عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنا یا یہودی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ असल नुस्खों के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनसे वो एक फायदा उठा रहे हैं। असल नुस्खे तो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनसे क्या फायदा उठा रहे हैं? अमल का कोई फायदा नहीं उठा रहे कि भाई उनके मुताबिक अमल भी करें, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आए। सबसे पहला अमल क्या है? तौरात और इंजील के जो असल नुस्खे हैं उनके ऊपर सबसे पहला करने का काम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आना। वो तो नहीं लेकर के आ रहा, ठीक है ना? बाकी बातें तो बाद में आएंगी, पहले तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना, ये तौरात और इंजील के नुस्खों के अंदर है ना, ठीक है? वो तो नहीं लेकर के आ रहे, ठीक है? तो अमल करने वाले जीरो हैं, लेकिन उन्होंने प्रिजर्व करके क्यों रखे हुए हैं ये चले आप बता दें। दे यूज दीज फॉर प्रिडिक्शंस फॉर इवेंट्स इन द एंड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? मसाया दज्जाल जो है वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी क्या निशानियां होंगी, ठीक है ना? मुगीबात के इल्म के लिए, उसके लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो भी मकसद क्या है उसका? भी मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद क्या? ग्लोबल डोमिनेशन हो जाए, ग्लोबल डोमिनेशन इनकी हो जाए, ठीक है ना? और जो ईसा अलैहिस्सलाम का गलत नजरिया इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, उस गलत नजरिए के मुताबिक इनको ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मिल जाए, ये भी है इनका। दोनों चीजें हैं, एक तो ग्लोबल डोमिनेंस, मुगीबात के जो इल्म है इनके पास, उसको क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके मुताबिक बाकायदा एक्शंस करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, क्यों? ताकि ग्लोबल डोमिनेशन मिल जाए। लेकिन एक और भी रीजन है ईसाइयों के पास, कम से कम वो क्या, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जब दोबारा से, इनके मुताबिक तो ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्ला मर गए ना, इनके मुताबिक मर गए, हमारे मुताबिक और कुरान के मुताबिक तो जिंदा है, इनके मुताबिक जो है वो उनका इंतकाल हो गया, वो दोबारा पैदा होंगे इनके मुताबिक, ठीक है? तो जब वो दोबारा पैदा होंगे ना, तो फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बिलवड हैं, उनसे हमें मोहब्बत है, तो हम जो है ना वो उनके जा करके गले लग जाएंगे उनके, हैं गले से बल्कि लटक जाएंगे जा करके उनके, क्योंकि हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, ठीक है? तो ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आना दुनिया के अंदर, यानी जिसको ये लोग दोबारा इन रीइनकार्नेशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग्स करना, उसके लिए जो है वो अपने आप को बेटर क्रिश्चियन बनाना, इनके अपने हिसाब से बेटर क्रिश्चियन जिस चीज को कहते हैं, बेटर क्रिश्चियन बनाना, इसके लिए भी वो अपने इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आई वॉज अंडर इम्प्रेशन दैट नॉट ए सिंगल एक्यूरेट वर्जन ऑफ टोरा एंड द इंजील इज लेफ्ट इन द 21st सेंचुरी। यू वर अंडर इम्प्रेशन, सो आज आपका इम्प्रेशन उम्मीद है कि खत्म हो गया होगा, ठीक है? नहीं, अब है मौजूद, लेकिन इट्स नॉट ओपनली अवेलेबल टू एनी वन, है ना? ये कहीं इन्होंने रखी हुई है, अब क्या पता इन्होंने वो वेटिकन सिटी के अंदर छुपा छुपो के तो रखते हैं ना, या अपने पर्सनल कलेक्शन के अंदर कुछ ने रखी हुई है, ठीक है ना? तो वो किसी को पता कोई थोड़ी है कहाँ पे रखी हुई है। हम तो जो ये बात कर रहे हैं, हम ये बात जो है वो कोई मैंने जाके देखा नहीं है कहीं पे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ चले आप बता दें, मैं ये बात जो कह रहा हूँ कि इनके पास असल फॉर्म में मौजूद है, वाई वाई एम आई सेइंग दैट? और ये क्विज है क्योंकि पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर क्लास के अंदर। वाई एम आई सेइंग दैट? मैंने कहीं जाके देखा है असल नुस्खा? मैंने तो नहीं देखा, तो मैं क्यों कह रहा हूँ फिर कि है असल नुस्खा मौजूद, क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? वैसे तो यहाँ पे सामने भी लिखा हुआ है कि जैसे कि बाज़ उलमा इब्ने तैमिया वगैरह ने लिखा है कि तौरात इंजील के असली नुस्खे कहीं कहीं मौजूद थे, ठीक है? तो उलमा इब्ने तैमिया ने जैसे लिखा, ठीक है, तो इन्होंने लिखा, मेरे सवाल का जवाब ये लिखा कि उलमा ने बताया। वैसे तो इसके अलावा इससे भी बड़ी एक रीज़न मौजूद है, उलमा ने बताया कि अलावा भी इससे भी बड़ी रीज़न मौजूद है, ठीक है? और उलमा में भी जैसे ना बाज़ उलमा ने बताया, ठीक है ना? तो भाई इससे ज़्यादा सॉलिड एविडेंस क्या है हमारे पास जी? इससे ज़्यादा सॉलिड एविडेंस क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया तो, लेकिन ऐसे कोई हदीस मौजूद नहीं है जहाँ तक मुझे इल्म है, और ना कभी जो है वो किसी बड़े आलिम से सुना कि ऐसी कोई हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फरमाया कि असल नुस्खा मौजूद है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या रीजन है? نسخہ موجود ہے، اصل نسخہ موجود ہے، اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ Then they must also study Quran for global dominance. Yes, they study everything for global dominance. ٹھیک ہے، اللہ نے حجت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، حجت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. چلیں وہ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے حجت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی تو رکھا ہوا ہے نا، اللہ نے تو ان کے ذریعے سے رکھا ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ بھائی حجت بھی آپ ازمپشن کر رہے ہیں نا، دلیل کیا ہے؟ پوری دنیا میں سیم نسخہ ہے، کوئی تبدیل کے بغیر، تبدیلی کے بغیر ہے کیا؟ پوری دنیا میں سیم نسخہ ہے، کوئی تبدیلی کیے بغیر سیم نسخہ ہے. کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. بیکاز قرآن ٹولڈ اس دیٹ دے ریکگنائز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لائک دیئر اون سنز. جی ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وانٹڈ ٹو اسٹڈی تورا بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹاپڈ ہم ٹو ڈو سو، اٹ مینز دیئر واز ایگزسٹنس آف ریئل کاپیز. نہیں، یہ کوئی وہ دلیل نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحیح والی کاپی ہی اسٹڈی کرنا چاہ رہے تھے. نہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ جس والی صحیفوں کو پڑھ رہے تھے تو وہ اصل والے صحیفے تھے؟ یہ تو نہیں ہے کہیں بھی. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن عظیم الشان کے اپنے الفاظ ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو مغیبات کا علم ہے، تو ان کے پاس یہ اتنا تفصیلی علم کہاں سے آیا اگر اصل کاپیز موجود ہیں ہی نہیں ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس یہ سارا مغیبات کا علم کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام خالی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایسے پہچانتے تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضوان، عمر فاروق رضوان، عثمان غنی رضوان اور دیگر صحابہ کرام، ان کی ساری نشانیاں ان کے پاس محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو یہ فرمایا نا کہ تورات و انجیل اصل میں باقی نہیں رہی، جو یہاں پہ بھی مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور یہ والی بات یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان دونوں میں تطبیق کیسے کریں گے؟ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ اصل باقی نہیں ہے، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ یہ اتنا تفصیل سے پہچانتے ہیں. تو تطبیق اس کی یہی ہے جو کہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تورات و انجیل کے اصلی نسخے کہیں کہیں موجود اس وقت بھی تھے اور آج بھی کہیں کہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی پبلک میں موجود نہیں ہے نا، پبلک میں موجود نہیں ہے، پرائیویٹ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ اس دور کے حوالے سے کہا جا رہا یا آج بھی ایسا سمجھا جائے گا کہ اصل کہیں نہ کہیں؟ نہیں، آج بھی ان کے پاس یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اصل نسخوں کو آپ کا کیا خیال ہے، یہ اتنا آسانی سے ختم کر دیں گے؟ نہیں، دے نو ہاؤ ٹو پرزرو تھنگس. مسئلہ یہاں پہ پرزرویشن آف اے بک نہیں ہے نا، مسئلہ یہاں پہ پرزرویشن آف اے بک کو تھوڑی ہے کہ ان سے جو ہے وہ اپنی کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی. بھائی ہمارا یہی تو مسئلہ ہے سارا کا سارا، ہم اللہ کے حکموں کو اہمیت نہیں دیتے. اصل اہم چیز حکم ہے، کتاب ان آف اٹ سیلف از ناٹ امپورٹنٹ وداؤٹ احکامات. احکامات اصل چیز ہیں. تو جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے تبدیلی کر دی، تو بھائی کتاب کے ٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی، کتاب کے احکامات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل اہمیت احکامات سے ہے. احکامات کا تبدیل ہونا یہ ایسے ہی ہے، تبدیل کر دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری کتاب کو تبدیل کر دیا، حالانکہ پوری کتاب کو تبدیل انہوں نے نہیں کیا ہے، انہوں نے احکام، اور احکامات از ناٹ تھیوری، احکامات از پریکٹس، عمل ہے احکامات کے اوپر. ٹھیک ہے، تو احکامات کو مسخ کر دینا، یعنی ان کے اوپر عمل کو مسخ کر دینا یا چھپا دینا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کتاب کو مسخ کر دیا، حالانکہ کتاب کے اصل الفاظ موجود ہوں بھی صحیح، لیکن کیا کرنا ہے، اس کا اچار ڈالنا ہے اس کا. احکامات ہے نا اللہ تعالیٰ کے اصل. تو اب ہم خود ہی احکامات کو اصل نہیں سمجھتے، ہم جو ہماری ساری اہمیت احکامات سے ہٹ کر کے الفاظ کے اوپر چلی گئی، صرف الفاظ. بھائی الفاظ تو اہم ہیں، لیکن صرف الفاظ تو اہم نہیں ہے نا. لیکن ہماری بدبختی کیا ہے، ہم نے احکامات پر سے اہمیت بالکل ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، तो अब हम समझते हैं कि जी नहीं नहीं भी अल्फाज मौजूद नहीं हैं, अल्फाज मौजूद नहीं हैं, फॉर्म भाई अल्फाज मौजूद हैं यार। ठीक है चले, उन्होंने और भी लिख दिया कि मन अहल अहल किताब उम्मतई कायमतुन यतलून आयात लाही आना अल्लैली वहुम यसजुदून, सजदे तिलावत दी हो गया ना इसके ऊपर। अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रातों को खड़े होकर खुदा की आयतें पढ़ते हैं और सजदे करते हैं। भाई ये वाली यमस्कून बिल किताब यमस्कून बिल किताब अकाम सला इन अब्दुलमसलिन, ये तो कुरान मजीद के बारे में बात हो रही है। खैर जब हर आयत को तुम इसको फिट करें ना, बहरहाल तो चले आगे चले, अभी बहुत देर हो गई। दे ब्रोक द बुक इन पेजेस, शो सम पेजेस एंड हाइड अदर्स। एग्जैक्टली अभी तो हमने सूरह नाम के अंदर ये पढ़ा है जदाकुमुल्ला, अभी तो सूरह नाम की जो तफसीर रमजान और मुबारक पे चल रही थी मर्दों और तो दोनों के अंदर, अभी तो हमने ये पढ़ा है कि उन्होंने किताब को जो है वो सफा सफा में क्यों रखा, ताकि कुछ लोगों को दिखाएं और कुछ जो है लोगों से छुपाएं। तो वहां पर भी ये बात हुई थी, हमारी क्लास में भी ये बात हुई थी कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ है अपने पास, मसला दिखाने का है लोगों को, पब्लिक में इन बातों को आम करने के मसला है सारा का सारा, प्रिजर्वेशन का मसला नहीं है असल में। ठीक है बहरहाल आगे से नहीं, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। खातम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस कमालात की तरफ इशारा, भाई जो असल समझने की बात थी ना हमारे लिए, जो टेक होम पॉइंट है हमारे लिए, जो असल चीज है क्या है हमारे लिए इसके अंदर सबक, अल्लाह के अहकाम का असल होना। और दूसरी बात जो पहले हो चुकी थी वो क्या, कि जब दीन में हम तब्दीली कर देते हैं तो अब उसको दीन इस्लाम कहने से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और कुछ नहीं। हम बिरयानी की मिसाल दे देते हैं, कोई बिरयानी अपनी तरफ से बना ले, कोई चावल अपनी तरफ से पुलाव शलाव बना ले और कह के ये बिरयानी है बिरयानी है बिरयानी है, है तो क्या उससे वो बिरयानी बन जाएगी? नहीं भाई, आप चेंज कर चुके हैं उसका मसाला, उसका रेसिपी, उसका सब कुछ चेंज कर चुके हैं, वो बिरयानी नहीं रही है। तुम बकते रहो बिरयानी बिरयानी बिरयानी, उससे वो बिरयानी नहीं बन जाएगी। सीधी सी बात है यार, कौन से मुश्किल काम है, लेकिन हम ये कर रहे होते हैं और मुस्तकिल करे चले जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ करे चले हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी हरकतों को। आगे फरमाते हैं कि इस आयत में अहले किताब को मुखातिब करके इरशाद फरमाना कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील फतरत के बाद आए हैं, इसमें एक इशारा इस तरफ भी है कि तुम लोगों को चाहिए कि आपके वजूद को गनीमत कुबरा और बड़ी नेमत समझें, क्योंकि मुद्दत दराज से यह सिलसिला बंद था, अब तुम्हारे लिए फिर खोला गया है। ठीक है ना, तो अब चलें आप बताएं, अल्लाह ताला ने यहां पर जो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना, ठीक है ना, और ये कि अंतकूलु मा जाअना मिन बशीरिन व नज़ीरिन, ठीक है, तो इसमें रसूल की कौन सी वाली सिफत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया? ठीक है, कि जिसकी वजह से तुम्हें जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इसके ऊपर, कौन सी वाली सिफत, यूबैनु लकुम कि जो तुम्हारी कंफ्यूजन्स पैदा हो चुकी थी, अनक्लेरिटी पैदा हो चुकी थी तुम्हारे अंदर चीजों के बारे में, हक और बातिल के बारे में, जो जो एक गडमड वाला मामला शुरू हो चुका था तुम्हारा, मिक्सिंग वाला मामला, तलबीस वाला मामला, दजल वाला मामला जो शुरू हो चुका था तुम्हारे दरमियान, हमारा वो जो रसूल है वो क्लेरिफाई कर देता है चीजों को, राइट। तो रसूल की जो सिफत यहाँ पे बयान करवाई, बशीर और नजीर जो है वो तो बाद में बयान किया ना, लेकिन इसी आयत के अंदर सबसे पहले रसूलुना युबैनु लकुम, तो ये कहने का मकसद क्या कि बातों का क्लियर हो जाना, राइट, हक और बातिल के दरमियान क्लियर डिस्टिंक्शन का बन जाना रसूल का सबसे पहले करने का काम, और असल नेमत और असल जो है वो अल्लाह ताला की रहमत वो तो ये है, इल्मी क्लियरिटी, इल्मी क्लियरिटी, राइट, क्योंकि युबैयनु जो है ना ये अमली क्लियरिटी की बात नहीं हो रही, ये इल्मी क्लियरिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर अगर ये एहसान होता है तो हमें अल्लाह का कितना शुक्र करने की जरूरत, कितना शुक्र करने की जरूरत है, क्योंकि जब कंफ्यूजन हो, हेजीनेस हो, तो आपका अमल ठीक हो ही नहीं सकता।
और बिल्कुल सही आपने फरमाया, रसूलों के असल वुरसा का यही काम है। रसूलों के जो असल वुरसा, जो वारिस कहलाने के काबिल हैं, उनका यही काम है कि बात को क्लियर करें, कंफ्यूजन्स क्रिएट ना करें, राइट, या पुरानी कंफ्यूजन्स को कंटिन्यू ऑन ना करें, बल्कि क्लियर करें मसले को, राइट, हाथ पकड़ के अमल करवाना, ये रसूल का काम नहीं है, ना रसूल के वुरसा का काम है कि बंदों के हाथ पकड़ पकड़ करके उनसे ये अमाल करवाते फिरें, है ना। सूरह अनाम के अंदर अभी क्या पढ़ रहे हैं कि मैं हफीज बना करके नहीं भेजा गया हूं तुम्हारे ऊपर, मैं तो नजीर बशीर और बात को क्लियर करने वाला बना करके भेजा गया हूं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए भाई। तो दूसरा इशारा इस तरफ भी है कि आपका तशरीफ लाना ऐसे जमाने और ऐसे मुकाम में हुआ है जहां इल्म और दीन की कोई रोशनी मौजूद ना थी, मखलूक खुदा खुदा से ना आशना होकर बुत परस्ती में लग गई थी। ऐसे जमाने में ऐसी कौम की इसलाह कोई आसान काम ना था। ऐसे जाहिलियत के जमाने में ये ना बुत परस्ती में लग गई थी, बल्कि बुत परस्ती की भी सबसे जो एक्सट्रीम शक्ल होती है ना, नफ्स परस्ती, जो कि अंदर के बुत की परस्ती शुरू हो चुकी होती है, ठीक है ना, और बहुत ही इंतहाई शक्ल के अंदर पहुंच चुकी थी। जैसे अभी पिछले जुमे के अंदर ही भी बात हुई है, और फिर बाद में भी जो है मजलिस के अंदर जो बैठे हुए थे हजरात, उनके सामने ही बात हुई है कि ये जो जमाना था, एक अजीब उसकी इस जमाने की खसूसियत सामने आती है, नबी अलैहिस्सलाम वाले जमाने की, ठीक है, कि इस जमाने में नफ्स परस्ती, ठीक है, बुत परस्ती आम हो गई थी, नफ्स परस्ती आम हो गई थी, लेकिन एक और इन लोगों की सिफत सामने आती है, वो क्या, इनके दरमियान एक और भी चीज थी कि जिसकी बड़ी कदर थी इनकी निगाहों में, वो क्या चीज भी आप बताएं जल्दी से। एक और चीज थी जिसकी इन लोगों की निगाहों में बड़ी कदर थी, वो क्या, आमाल की। लेकिन यू आर क्लोज। जी, इल्म की कदर एक्चुअली नॉट क्वाइट, ठीक है ना, नहीं, लुगत की कदर तो थी, लेकिन लुगत की कदर भी वैसे इल्म की कदर, क्योंकि लुगत का इल्म जो है वो ही होता है ना, ठीक है, कल्चर की कदर थी। नहीं, ठीक है, इनके दरमियान इल्म की कदर नहीं थी असल में, मैं कहना भी यही चाह रहा था, इल्म ही, लेकिन इल्म की कदर नहीं थी, बल्कि उलमा की कदर थी। क्या उलमा की कदर थी? इन अ वे एक्चुअली थी, लेकिन इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को चेक करवाने के लिए किसके पास लोगों को भेजा था अपने? नबी अलैहिस्सलाम को वेरीफाई करवाने के लिए कि क्या वाकई अल्लाह के नबी हैं, किसके पास भेजा था? उलमाए यहूद के पास भेजा था, उलमाए यहूद के पास भेजा था अपने मंदूबीन को। तो क्या ये उलमाए यहूद की कदर नहीं करते थे? क्या ये उलमाए यहूद को किस काबिल नहीं समझते थे कि उनसे जो है वो इल्म हासिल करें? भाई काबिल समझते थे, जब ही तो लोगों को भेजा था उलमाए यहूद के पास, तो उलमा की कदर क्यों की जाती है? उनके इल्म की वजह से की जाती है ना, उलमा की कदर क्यों की जाती है? उनके इल्म की वजह से की जाती है ना, अगर इल्म की कदर ना हो तो उलमा की कदर कैसे कर सकते हैं? तो क्या मतलब बना कि ये इल्म की कदर, असल में जुमला ऐसा है, बड़ा मुश्किल सा है बयान करना, ये उलमा की कदर करते थे, लेकिन किस किस्म के उलमा थे वो यहूद के? क्या वो इल्म पर अमल करने वाले उलमा थे? नहीं, वो अपने इल्म पर अमल करने वाले उलमा तो नहीं थे, लेकिन फिर किस किस्म के उलमा थे? जल्दी से बताएं, एक लफ्ज फिर आप क्लास रोक खत्म भी करनी। वो इल्म वाले तो थे, लेकिन इल्म पर अमल करने वाले उलमा तो नहीं थे, तो फिर वो क्या थे? वो फेमस उलमा थे, दे वर फेमस एज उलमा, ठीक है ना। वो किताबी उलमा थे, अमली उलमा नहीं थे। वो थ्योरेटिकल आलिम थे, अमल उनका खराब हो चुका था, बेअमल भी नहीं थे बल्कि बदअमल हो चुके थे, ठीक है ना। लेकिन शोहरत उनकी बड़ी थी, शोहरत उनकी बड़ी थी, पीपल लुक्ड अप टू देम एज उलमा एंड पीपल डिड नॉट केयर कि इनका अमल कितना गंदा है, कितना बुरा इनका अमल है, पीपल डिड नॉट केयर। लेकिन फेमस बहुत थे वो एज एन आलिम, एंड दिस इज वॉट दे वर इंटरेस्टेड इन, दुनियावी शोहरत, ठीक है, दुनियावी शोहरत, जिसको कि उर्दू में क्या कहते हैं, ऊंची दुकान। बेशक फीका पकवान हो, हमें क्या इससे, फीका पकवान से ऊंची दुकान तो है ना, बस हम तो ऊंची दुकान के पीछे भागेंगे। फीका पकवान सो व्हाट, ऊंची दुकान बस सब ठीक है। जैसे हम यही काम करते हैं, हम ऊंची दुकान के पीछे भागते हैं, पकवान की हमें फिक्र नहीं होती कि उसके अंदर मिल क्या रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की कदर कह सकते हैं, हाँ इंफॉर्मेशन की कदर, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल लेकिन अमल की कदर नहीं, अमल की कोई हैसियत नहीं, ठीक है ना। तो बदअमल उलमा के पीछे भी जो है वो इतनी कदर करते थे, उनकी भी इतनी कदर करते थे कि नबी को वेरीफाई करने के लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अमल की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। हम भी जो है ना उसी तरीके से शोहरत के पीछे भागने वाले लोग, और आजकल जो है वो दीनी उलूम की शोहरत हो गई है, दीनी उलूम के ऊपर अब तो माशाल्लाह बड़े पैसे भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो उसके ऊपर रेल पेल होती है दीनी उलूम के ऊपर, है। तो बस दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर हैप्पी अबाउट। अमल गया जहन्नुम में, अमल गया भाड़ में, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही अमल, वही हरकतें हम भी कर रहे हैं, हमें भी इसको गलत समझना चाहिए और इससे तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।